SBS हिंदी।
भारत के जो पौराणिक ग्रंथ हैं, महाग्रंथ है, जो साहित्य है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं कि जो आज के समय में भी तादर्श हैं, या फिर यूँ कहें कि उतनी ही तरीके से मौजूद हैं। तो एक ये भी संदर्भ है कि जो मनोचिकित्सा है, जो मेंटल हेल्थ है, साइकोलॉजी है, उसके विषय में भी हमारे पौराणिक ग्रंथों में बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही विस्तृत तरीके से बात की गई है। तो चलिए आज जानते हैं कि क्या संबंध है माइथोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच में, और इस संबंध को देखकर जो अभ्यास किया गया है डॉक्टर मनन ठकरार ने किया है, तो चलिए उन्हीं से जानते हैं क्या खास बात निकली उनके इस अभ्यास में। डॉक्टर मनन, एसपीएस हिंदी पर आपका स्वागत है।
एसपीएस हिंदी के सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार।
पहले तो ये बताइए कि आजकल का जो साइंस है, मॉडर्न साइंस है, वो ज्यादातर कहता है कि ये पौराणिक बातें हैं, उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन आपने जो विषय चुना है अभ्यास के लिए, उसमें आपने कुछ लिंक पाई है, कुछ संबंध पाया है कि जो पौराणिक ग्रंथों, साहित्य में जो बातें कही गई है, वो आज के दिन भी है। तो पहले ये कहिए कि ये रिसर्च क्या था और इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली।
तो वही जो आपने बात कही कि काफी ऐसी बिलीफ है कि जितने भी साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स है या जितने भी साइंटिफिक लोग हैं, वो ज्यादातर माइथोलॉजी के बारे में बहुत अच्छा या बहुत कंस्ट्रक्टिव नहीं बातें करते हैं। और ये एक मिथ जो है या ये एक मान्यता जो है, वो मान्यता तोड़ना काफी जरूरी लगा, क्योंकि काफी चीजें जो अपनी माइथोलॉजी में है, इंडियन माइथोलॉजी में, वो काफी रेलेवेंट, काफी साइंटिफिक और काफी लॉजिकल है। तो अभी क्या हो जाता है काफी बार कि जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, तो वो या तो चूज करता है कि या तो मैं माइथोलॉजी को मानूं या तो मैं साइंस को मानूं। एक्चुअली यही चीज है कि दोनों चीजें काफी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ सेम बोल रही है, पर काफी हद तक जो बेस है वो काफी सिमिलर और काफी कोरिलेट कर पाए ऐसा है। तो उसके कारण जो एक पेशेंट को एक डिफिकल्टी होती है कि भाई मुझे एक राइट पाथ चूज करना है, वो ना करना पड़े, शायद इस प्रोजेक्ट और ऐसे कई और प्रोजेक्ट हो, तो थोड़ा अपना साइंस जो है वो पैलेटेबल, जो वर्ड हम यूज करते हैं कि जब भी कोई चीज को हम आराम से समझ सके और उसका आसानी से निर्वहन कर सके, तो उसको पैलेटेबल कहते हैं। तो साइंटिफिक जो भी ट्रीटमेंट है उसको ज्यादा पैलेटेबल बनाने में माइथोलॉजी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है।
तो आपने कहा कि बहुत सारी बातें हैं जो पौराणिक ग्रंथों में कही गई है, माइथोलॉजी में कही गई हैं, वो मदद के रूप में, मदद रूप हो सकती हैं वहाँ पे जो संदर्भ दिया गया है। तो आपको पूछना चाहूँगी कि अगर आप कुछ समझा सकें कि क्या संबंध आपने पाया, किस तरीके से, अगर कुछ उदाहरण के साथ हमें बता सकें।
तो जैसे अपनी माइथोलॉजी में अंतःकरण के चार पार्ट बताए गए हैं, अगर आपको पता हो तो, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अभी ये जो अभी मैं आपको एग्जीक्यूटिव फंक्शन या कॉग्निटिव फंक्शन, ऐसे हैवी साइंटिफिक वर्ड्स यूज करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, तो वो शायद सभी लोगों के लिए उतना, या सभी पेशेंट्स के लिए या सभी आम जनता के लिए उतना पैलेटेबल नहीं रहेगा। पर वही चीज जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन में बताई गई है साइंटिफिक लैंग्वेज में, वही चीज काफी हद तक बुद्धि, जो वर्ड हमारा यूज किया गया है उसके फंक्शन में या उस संदर्भ में हमारे माइथोलॉजी में किया गया है। वैसे ही जैसे मोटिवेशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, जब भी सपोज कोई एडिक्शन से सफर करता कोई पेशेंट हो, जिसको बोले कि सपोज वीड का एडिक्शन है या अल्कोहल का एडिक्शन है, तो उसमें हम जो मोटिवेशन एनहेंसमेंट थेरेपी करते हैं कि जिससे उस इंसान का इंटरनल मोटिवेशन, दो टाइप के मोटिवेशन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो हम थ्रेट देते हैं कि भाई पैसों का खर्च हो रहा है या तेरे फैमिली मेंबर सफर कर रहे हैं, तो वो सब एक्सटर्नल मोटिवेशन हुआ, एक टाइप की थ्रेट हुई। इंटरनल मोटिवेशन वो होता है जो हमारे खुशी के लिए या हमारे ग्रेटिफिकेशन के लिए हम करते हैं। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में जिस चीज को इंटरनल मोटिवेशन कहा गया है, उसी को काफी जगहों पे, अगर आप भगवद गीता में देखें या महाभारत में देखें, तो उसी को मन कहा गया है। तो अगर मैं मेरे पेशेंट को ये सब चीजों और ये सब शब्दों का यूटिलाइजेशन मैं करूंगा और ये सब फ्रेजेस से मैं काउंसलिंग करूंगा पेशेंट का, तो वो काफी हद तक समझ पाएंगे और आसानी से उसको अमल में भी ले पाएंगे। पेशेंट को ऐसा नहीं लगेगा कि मैं या तो विज्ञान को चुनूं या तो धर्म को चुनूं, ये जो धर्म संकट है उसको एड्रेस करना ये स्टडी का एम था।
आपने कहा कि आपके अभ्यास का जो एम था, जो उद्देश्य था, वो धर्म संकट को दूर करना था, और आपने कहा कि जो भारी भरकम टर्मिनोलॉजी हमारे माइथोलॉजिकल ग्रंथों में इस्तेमाल की गई है उसको कहीं ना कहीं आप सरल बनाना चाहते हैं। कुछ सरल उदाहरण के तौर पर कुछ बात कर सकते हैं ताकि इसी बात को हमारे जो श्रोता मित्र है वो आसानी से समझ सकें।
जी, जैसे मैं सपोज पेशेंट को बोलता हूँ कि भैया आपको पैनिक डिसऑर्डर है, तो पैनिक डिसऑर्डर पेशेंट को इजीली समझ में नहीं आएगा, पर ज्यादातर लोगों ने इंडिया में भगवत गीता पढ़ी होती है। भगवत गीता में पहले अध्याय में अगर आपको याद हो तो अर्जुन अपने जो मानसिक अवस्था है उसको डिस्क्राइब करते हैं। तब वो उस पहले श्लोक में अर्जुन ने कहा है कि मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे हाथ पांव पसीने से लथपथ हो गए हैं, मेरी हार्ट बीट एकदम बढ़ गई है। तो वो जो डिस्क्रिप्शन जो है वो पहले श्लोक में वो डिस्क्रिप्शन आइडियल पैनिक अटैक का डिस्क्रिप्शन है। तो वही चीज अगर मैं वो उदाहरण यूज करके मैं बोलूंगा कि अगर ये देखो ये चीज है तो ये जो आपको सिम्टम्स हो रहे हैं वो एक एंग्जाइटी के अटैक के या पैनिक अटैक के सिम्टम्स हैं। तो वो उस चीज से एक तो कि ज्यादातर लोगों को क्या होता है कि साइकियाट्री से रिलेटेड एक स्टिग्मा भी होता है कि भैया साइकियाट्री या मेंटल डिसऑर्डर मतलब पागल, तो वो चीज भी काफी हद तक दूर हो जाती है क्योंकि ये चीज काफी नॉर्मल है, किसी भी इंसान को हो सकती है। जब भी आपको पैनिक अटैक आता है तो यही उसके लक्षण होते हैं। जैसे बुखार आता है तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है, वो एक लक्षण है, वैसे यही ये भी एक बीमारी का लक्षण है। तो जब ये चीज हम बोलते हैं कि ये चीज हमारी माइथोलॉजी में भी दी गई है इतनी सरलता से, और इतने जो कह सकते हैं कि एकदम शूरवीर इंसान को भी अगर पैनिक अटैक हो सकता है, तो हम तो फिर भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, आम इंसान है, तो हमको भी हो भी सकता है ना।
बिल्कुल, तो बहुत ही सरल चीज़ों में यहाँ पर हमारी रामायण महाभारत भगवत गीता जैसे ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों में बताई गई है हमारी जो मानसिक अवस्था है उसके बारे में, और वर्तमान समय में भी हम किस तरह से उसे फेस कर रहे हैं, किस तरह से उसका सामना कर रहे हैं उसके बारे में। डॉक्टर मनन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस संबंध को उजागर करते हुए हमारे साथ बात की। SBS हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू हरिका फॉर हैविंग मी।
आपके विचार हमें बताए। SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।